अब इस आयत को अगर आप समझ गए हैं तो अब अगली आयत बहुत आसान है। अभी से थोड़ा सा खुलासा ले लें ताकि बात वाजे हो जाए। अल्लाह में कितनी सिफात है, और फिर मेरी नजरों के सामने अनदेखी सूरत बकरा की वो आयतें हैं कि जो अल्लाह ला इलाहा यानी आयतुल कुर्सी के फौरन बाद हैं। ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यना रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फकद इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्का। उसके बाद क्या आया था, अल्लाह वलीयुल लजीना आमनू युखरिजु मिनज जुलुमात इलन नूर। अब बिल्कुल उसी वजन की आयत आ रही है। लोग इतनी बड़ी हस्ती को छोड़कर किन कमजोर सहारों को अपनाते हैं, अब उस बात का तस्करा। आइए पढ़ते हैं फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। आयत 28 से, ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफिरीन औलिया, ना बनाए ईमान वाले काफिरों को दोस्त, मिन दूनिल मोमिनीन ईमान वालों को छोड़कर, यानी अहले ईमान काफिरों को दोस्त ना बनाएं ईमान वालों को छोड़कर। अच्छा ये क्या होता है, अभी देखते हैं। अगर बना लिया तो क्या होगा, वमन यफल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फी शैयन, और जो कोई भी ये हरकत करेगा तो फिर अल्लाह के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। इतनी बड़ी धमकी, देखिए ये प्यार की इंतहा है। मुझे तो लगता है जब कोई किसी से अपनी दोस्ती को जाहिर करे और उसको कहे मैं तुम्हारे लिए ये भी कर सकती, मैं ये भी करूंगी, मैं वो भी करूंगी, फिर बंदा उससे रुख फेर कर दूसरे की तरफ देखे ना, तो फिर गुस्सा भी उतना आता है। पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने अपनी बेपनाह कुव्वतों को देखा और हमने इसको इतना महसूस नहीं किया। मेरा दिल करता है ये जो आयतें हमने आखिरी पढ़ी ना, इसको खुली खिड़की के सामने खड़े होकर पढ़े। इतना बड़ा समंदर मेरे रब का है, इतना बड़ा आसमान मेरे रब का है, इतने दरख्त मेरे रब के हैं, इतनी बारिश रब की है, क्या कुछ कायनात में फैला है। तो उन सब खूबियों वाली जात को छोड़कर ला यत्तखिज़ुल मोमिनूनल काफिरीन औलिया, फिर क्या अल्लाह को छोड़कर किसी और को दोस्त बनाते हो। अल्लाह औलिया है ना, वली, पीछे भी इस पर बात हुई हमारी। कल भी दोस्त को कहते हैं जो एक दूसरे का राजदार भी हो, इसकी मदद भी करे, पुश्त पनाह भी हो। इसी को फिर आगे आप पढ़ेंगे वलीजा भी कहते हैं, फिर इसी तरफ बितौना भी कहते हैं। यानी दोस्ती का आखिरी दर्जा है किसी को वली बनाना। मवाली भी इसी से है, विलायत लफ्ज भी इसी से है। मतलब यह है कि फिर अल्लाह से ज्यादा दूसरों पर नजरें लगाते हो, जज्बाती ताल्लुक रिश्ता मोहब्बत उनके साथ अल्लाह को ये पसंद नहीं। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैय्यन, अच्छा जो ये हरकत करे, कौन सी हरकत, यत्तखिज़ा औलिया उनको दोस्त बनाने की, तो फिर अल्लाह के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब, इस आयत के ऊपर हम परेशान होने लगते हैं, ऐसे लगता है कि हम नॉन मुस्लिम से कोई दोस्ती कर ही नहीं सकते। और बाज लोग जज्बाती हो कि जब ये आयतें पढ़ते पढ़ाते तो बहुत ही कुछ बोलते हैं, बहुत बेलाग ही बोलते हैं। तो समझ लीजिएगा, देखिए ताल्लुक के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, चार आम ताल्लुक के दर्जे होते हैं। अगर आप 1, 2, 3 करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। एक ताल्लुक का दर्जा होता है जिसको आप कहते हैं मवासात। मवासात मीम वाओ अलिफ सीन अलिफ और गोलता। मवासात कहते हैं हमदर्दी को। कोई इंसान बल्कि कोई जीरो जानवर है, परिंदा है, बिल्ली है, आप उसको किसी मुश्किल में देखते हैं तो आपको उस पर तरस आता है, आता कि नहीं आता। होमलेस पीपल को देखें तो तरस आता है, सर्दी में ठिठुरते हुए को देखें तो आता है ना। ये ताल्लुक का दर्जा हर इंसान से जायज है, बल्कि बेजान से भी जायज है, ठीक है, हर जीरो से जायज है। काफिरों के साथ मुसलमानों का हमदर्दी का ताल्लुक होना चाहिए। किसी जगह हरिकेन आ गया, किसी जगह जलजला आ गया, कुछ काफिर बेघर हो गए, हमें पूरे दिल के साथ उनकी मदद करनी है, नॉन मुस्लिम हो, काफिर हो, कोई भी हो, मानना। दूसरा दर्जा होता है मामलात का। मामलात चलते हैं, डीलिंग्स, पैसे दिए चीज ले ली, आप खीवी पे गए खाना लेकर आए पैसे देकर आ गए, टायर शॉप पे गए गाड़ी के टायर लगवाए पैसे दिए चीज लेकर आ गए, मामलात है। आप जॉब कर रहे हैं उनके पास, वो आपके पास कर रहे हैं, इट्स ओके कीजिए, ये भी जायज है। तो गैर मुस्लिमों के साथ मामलात भी चल सकते हैं। नबी सल्लम तो जब दुनिया से गए उस वक्त भी आपकी जिरा एक यहूदी के घर में رہن پہ رکھی ہوئی تھی اور آپ نے اسے جو لی ہے بیٹھے قرض پہ، ٹھیک ہے یہ بھی جائز ہے. تیسرا ایک درجہ ہوتا ہے جس کو مدارات کہتے ہیں، اردو میں آپ کہتے ہیں خاطر مدارت، میری آپ کی خاطر، میں آپ کے گھر گئی، آپ ان کے گھر گئے، آپ نے ان کے پاس گئے، کوئی نان مسلم آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کی ہاسپٹیلٹی کریں، کھانا پکائیں، ان کو بھیجیں، ان کو بلائیں، کوئی آتا ہے اس کو بٹھائیں، ڈرنک دیں، پوسٹ مین آ گیا اس کو ڈرنک دیجئے، یہ بھی جائز ہے، کیا مشکل ہے. ایک آخری درجہ آتا ہے تعلقات جس کو کہتے ہیں ولایت، اسی کو آگے ہم پڑھیں گے، سورت نساء میں بھی آئے گا، یہ موضوع چلتا ہی جائے گا، نساء ہر سورت میں آتا ہے تھوڑا تھوڑا. اس کو یہاں کہا گیا ولایت، آگے جا کے بتانا کہا جائے گا. یہ وہ درجہ ہوتا ہے جس میں بندہ دوسرے پہ ریلائی کرنے لگ جاتا ہے، امیدیں لگانے جاتا ہے اور اپنے دل کا راز اس کو دینے لگ، وہ نہیں جائز. مسلمان کافروں کو مسلمانوں کے راز دے دیں، جائز نہیں. مسلمان کافروں پہ وہ نظریں لگانے لگ جائیں جو اللہ پہ لگانے کی ہیں، وہ نہیں جائز. غیر مسلموں سے کچھ مانگنا اور اسی پہ اپنی زندگی کو لے جانا، وہ جائز نہیں ہے. حضرت عمر کی مثال موجود ہے کہ ایک دفعہ ان کے وقت میں قحط پڑا تو انہوں نے کسی غیر مسلم حکومت کے سربراہ کو مدد کی درخواست بھیج دی، اس نے خوشی خوشی سامان بھیجا اونٹوں پہ لاد کے. اتنا بڑا قافلہ کہ پہلا اونٹ اگر مدینہ میں ہے تو آخری اونٹ ابھی اس کے ملک میں تھا، اتنا لمبا قافلہ، پر کچھ بھی نہیں ہوا. چند دن کے بعد پھر بھوک پیاس. ایک بدری صحابی جو بھی زندہ تھے ابھی اس دور میں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہتے ہیں یہ عمر کو کیا ہو گیا. بس اتنی بات. انہوں نے آ کر عمر کو صبح خواب سنا دیا. اب عمر کو تو پڑ گئی اپنے ایمان کی فکر، مجلس شورا بلا لی، علماء کو بلایا، کہا میری غلطی ڈھونڈو، میں نے کیا غلطی کی ہے کہ اللہ کے نبی ناراض ہوئے ہیں. کہا عمر آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے صلاۃ الاستسقاء تو نہیں پڑھی اور ایک غیر مسلم سے مدد مانگ لی. کہا یہ تو غلطی ہوئی، چلو اعلان کیا شہر میں سب کھلے میدان میں جائیں گے. وہاں جا کے بارش کی دعا کی، واپسی پہ آئے جل تھل ہو گیا، اتنی بارش کی مدینہ کی گلیوں میں بھی پانی تھا اور سارا قحط ختم ہو گیا. یہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. دیکھیے زندگی میں سوکھی شاخوں کو ہرا ہوتا دیکھا آپ نے کبھی؟ سوکھی ٹہنیوں پہ پتے لگتے دیکھے؟ آپ کہیں گے کس نے نہیں دیکھے. آج کل کی جو سوکھی ٹہنیاں باہر درختوں کی، کبھی کوئی مان سکتا ہے کہ کچھ مہینے بعد یہ پتوں سے لدی ہوں گی؟ میں تو اپنی کھڑکی سے وہ درخت کو دیکھ کے روز یہی کہتی ہوں، اللہ زندگی میں کئی دفعہ سوکھی شاخوں کو ہرا کر دیتا ہے، سب مایوس ہوتے ہیں، اس کی نصیب میں اب کوئی خوشی نہیں، اس کو کچھ نہیں ملنا. کوئی مجھے چند دن پہلے سنا رہا تھا کہ کسی کپل کی شادی کو 22 سال ہو چکے تھے اور انہوں نے ایک بچہ کسی کا لے لیا، ایسے ہی اڈاپٹ کیا ہوگا، کہتے بچہ لیا، اس کے بعد اللہ نے ان کو خود بھی بیٹی لی تو بیٹا آ گیا، 22 سال بعد اللہ نے اولاد دے دی. تولی جو اللیل فی النہار وتولی جو نہار فی اللیل، بے جان چیزوں سے جاندار، جاندار سے بے جان. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، 4 بچوں کی ماں ہے، ایک ایک کر کے سارے بچے چلے گئے تو خالی شاخ کی طرح کھڑی ہو گئی. جی بھی زندگی میں کسی چیز پہ مان نہ کرے. میں نے کسی کو نصیحت کی، میں نے ایسی بات ہو رہی تھی تو کہہ رہی تھی مجھے اپنے شوہر سے بڑی محبت ہے، اور جو ہر ایک کو ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اچھی بیویاں کرتی ہیں، اچھے شوہر اپنی بیویوں سے کرتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ اپنے شوہر سے محبت ضرور کریں لیکن ان کو دل میں نہ بٹھائیں، کس کو پتہ کس نے پہلے جانا ہے. اگر آپ نے ان پہ نظریں لگا لی، دل پہ لگا دیا، میں آپ کو بھی بتاتی ہوں، اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو گیا، آپ ڈپریشن میں چلی جائیں گی. بندے کا دل محبت کرے، دل میں نہیں بٹھانا، دل میں لا الہ الا اللہ. لوگ کہتے ان کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی، کبھی نہ بولیں یہ جملہ، یہ میرا بچہ ہے، اس کو کچھ ہو گیا میں نہیں جیوں گی. اللہ کہتا پھر جی کے دکھاؤ، پھر جیتے ہیں لوگ. اللہ کی ذات اس قابل ہے کہ اس پہ نظریں لگائیں، وہ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. میں نے ابھی سے ٹرپ میں ایک سیشن دیا ہے، میرا دل ہے کہ اللہ آپ کے نصیب میں کرے میں کسی فرائیڈے میں آپ کو دوں. مینٹلی اسٹرانگ پیپل، 13 ڈفرنٹ ان کی باتیں، کہ ذہنی طور پہ صحت مند لوگ کون ہوتے ہیں اور ذہنی طور پہ بیمار لوگ. اتنا فائدہ انہوں نے اسے اٹھایا ہے کہ مجھے خود بھی امید نہیں تھی کہ اتنی اللہ اس میں خیر ڈال دے گا. اور سٹاف کے ساتھ کیا تھا کہ ہم کیوں ذہنی طور پہ پیچھے رہ جاتے ہیں، کرتے کرتے ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ڈھیلے ہوتے ہوتے ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں. بہت ساری وجوہات میں وہاں باتیں کہی تھیں، لیکن یاد رکھیے अल्लाह पे नजरें लगाना बंदे को मजबूत करता है। जब वो जिंदा से मुर्दा कर मुर्दा से जिंदा को निकाल सकता है तो मैं गैरों पे नजरें क्यों लगाऊं। और आप देखिए हमारी जिंदगी का ये रूटीन आपको दिख रहा है, ये जो बात हुई ना कि तुखरीजुल हय्या मिनल मय्यित, इस पे थोड़ी सी बात नहीं हुई थी पीछे, मुर्गी में से अंडा निकलना कोई आम बात है और अंडे में से चूजे का निकलना आम बात है। कौन करता है? अल्लाह की जात करते है। माँ मुर्दा है, माँ बच्चे को पैदा करके मर गई, बच्चा जिंदा है, और जिंदा माँ के अंदर से मुर्दा बच्चा निकल आता है। इतना कुछ वो कर सकता है तो क्या मेरे आपके काम उसको मुश्किल है? तो लिहाजा अल्लाह कहते ला यत्तखिज़ल, मुझे छोड़कर फिर तुम इधर उधर मुंह ना फेरो, बस तुम मेरे पे नजरें लगाओ। हाँ मगर इल्ला अन तत्तकु मिनहुम तुकात, इस हिस्से को हाईलाइट कीजिएगा, सिवाय ये कि तुम इनसे बचने के लिए अपना बचाव करना चाहो। बस क्या मतलब? बस वक्त ऐसे हालात होते हैं कि खुले मुकाबले का भी मौका नहीं आया होता, तब दुश्मन को तरह देते हैं और गोया कि आप कह लीजिए कि कुछ टाइम मांगते हैं, जैसे डॉचिंग वाली कैफियत होती है। क्या मतलब? बचते बचाते इनसे मामला करो, गैर मुस्लिमों के साथ रहो, खाओ पियो बात करो, बट बी केयरफुल, कहीं ये डस ना ले। देखिए किसी ने अपने घर में अगर शिकारी कुत्ता रखा हुआ है तो वो उसको खिलाए पिलाएगा, लेकिन डरेगा कि किसी वक्त ये मुझे पकड़ ना ले। तो यहां यही बात की गई कि मुस्तकिल तौर पर कुफार से कल्बी मोहब्बत कायम करना ये जायज नहीं है। हाँ जरूरत के तहत खातर मदारत है, मामलात हैं, इट्स ओके, फिर ठीक है, अदरवाइज फाफू वसफहू। और साथ ही कवायो हज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, मुझे इस आयत से बहुत डर लगता है। दो दफा आएगी, अभी भी आ रही है, आगे भी आ रही है अगली आयतों में भी, और अल्लाह तुम्हें डराता है अपने नफ्स से। हम अमूमन किससे डरते डराते हैं अपने बच्चों को? सांप से, कीड़े से, शेर से, बिच्छू से, ये सब डर झूठे हैं। स्केरी मूवीज दिखाएं, थोड़े दिन बाद उसका डर खत्म हो जाएगा, सांप को दो चार बार कोई तस्वीरों में देख लेगा, उसे खेलने लग जाएगा। एक डर जो बंदे को निडर नहीं करता वो अल्लाह का डर है। अल्लाह कहते मेरा डर रखो, मुझसे डरो, क्योंकि वही अल्लाहिल मसीर, पलट के तुमने मेरी ही तरफ आना है, आओगे तो मेरी तरफ, फिर लग बता जाएगा। इतनी बड़ी हस्ती की कदर ना करके तुमने जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया? रिस्क उसके हाथ में, तुम दूसरों से मांगते रहे, डरना उससे था, तुम दूसरों से डरते रहे, तो फिर याद रखो वही लाहिल मसीर, पलट कर तो तुमने अल्लाह की तरफ आना है। ये है अकीदे की वो बड़ी खराबी जो सारे गुनाहों की जड़ बनती है, जो इंसान को बड़े से बड़े काम गलत करने पे मजबूर करती है, और वो क्या कि बंदा अल्लाह की बजाय दूसरों से वो ताल्लुक रखने लगता है। और इसको चेक करें, ये चीज सीधी होगी बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम इंसान हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जहां हमें दूसरों पे रिलाई करना पड़ता है, लेकिन आपको अभी से बता दूं कामयाबी आपको होगी अल्लाह से ताल्लुक की बुनियाद पे। नेमतें होती हैं, फायदे नहीं होता। किसी से मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा कभी आपने सोचा इतने अच्छे घर में आपकी शादी हुई, इतना अच्छा शौहर आपको मिला, अल्लाह ने शादी के बाद बच्चा भी दे दिया, दुनियादारी के नाते से देखा जाए तो आप खुशकिस्मत तरीन लड़की हैं और इतनी छोटी उम्र में मिल गया, पर आपको क्यों निराश आ रहा? ये ढूंढे, जब बंदे को नेमत डस जाए, अच्छा खाना सब खा रहे हैं, सेहतमंद है, आप अच्छा खाना खा के बीमार हो गए, सोचिए फिर इसमें आपका कोई कसूर है। ये अल्लाह ताला की तरफ से फिर सजा होती है, इसीलिए अगली आयत में दिलों की बातें कर दी, कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम अव तुबदूहु यअलमहुल्लाह। आप कह दीजिए जो कुछ सीनों में है तुम इसको छुपाओ या जाहिर करो, वह यअलमु मा फी समावाति व मा फिल अर्ध, और अल्लाह जानता है उसको जो आसमान और जमीन में है, क्योंकि वल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। कहां जाओगे बताओ? देखिए 12 सिफात वहां थी ना, तो ये भी उसमें ऐड कर लें, छुप ही नहीं सकते, एलानिया जाहिर जो भी, पीछे खौफ की बात दिलाई कि देखो मेरे से डरो, और अब अपने इल्म की इंतहा बताई कि दिल में छुपी हुई बातों को भी जानता हूं, और नीयतों को अल्लाह जानता है। मैं कहती हूं मैं और आप यहां क्यों बैठे हुए हैं? क्या मैं एक दूसरे के अंदर को नहीं जानते? جو گمان یا خیالات دوسروں کے بارے میں ذہنوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، ایون ایک گھر میں رہنے والے بھائی بہن، ماں باپ، شوہر بیوی، اگر دوسروں کو پتہ لگ جائیں، سچ بتائیں، بات شکل بھی دیکھیں ہماری اور ہم ان کی دیکھیں، کبھی بھی نہ دیکھیں. اللہ کو سب کچھ پتہ ہے اور وہ ہمیں کھانا بھی دے رہا، رزق بھی دے رہا، روٹی پانی بھی دے رہا. اس لیے بندے کو پھر سوچنا چاہیے کہ میں اپنے دل کو پاک رکھوں. گندے خیالات دل میں آئے، دماغ میں، سب سے زیادہ حیا کریں تو اللہ سے کریں، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھ لیتا ہے، آسمان و زمین کی باتوں کو جانتا ہے، وہ مجھے کیوں نہیں جانتا. اور بندوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہونا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر، جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گا جو اس نے نیکی کی ہوگی، وما عملت من سوء، اور جو بھی برائی کی ہوگی، یعنی برائیاں اور بھلائیاں سب نفس کی صورت میں، ایک وجود کی صورت میں حاضر ہوں گی. محضرہ کا لفظ آئے ادھر، حاضر ہونے کے لیے عربی زبان میں تین لفظ آتے ہیں، حضر، شاہدہ اور اعتدا، عین تال تا دال. حاضر کہتے ہیں آ موجود ہونا، آمنے سامنے، جیسے اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. شاہدہ کہتے ہیں کسی چیز کی دیکھ بھال کرنا، دیکھنا اور پھر بیان کرنا. اور اعتدا کہتے ہیں کسی سامان کا پہلے سے تیار موجود ہونا یا حاضر ہونا. یہاں نیکیوں کے حاضر ہونے کی بات ہے، کیا جسمانی شکل میں نیکیاں ایسے ایک دوسرے کے سامنے کر دی جائیں گی جیسے اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہوئے، فیچرز بدل جائیں گے. اور حدیثوں میں اس کی بہت مثالیں آتی ہیں. گناہ جو ہے نا، گائے، بکری، بھینس، اونٹ کی شکل میں ہوں گی اور بندے کے کندھوں پہ. حدیث میں آتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ دیکھتا ہوں، ایک شخص ہے اس کے کندھوں پہ ایک اونٹ ہے، دوسرے کو دیکھ رہا ہوں اونٹ کے اوپر بکری ہے، بکری یوں کتارے ہیں. کہا یہ کیا؟ کہا ان کے یہ جو گناہ، آج بھی ہیں ہمارے گناہ ہمارے کندھوں پہ. کبھی کندھے تھکیں، بوجھل ہوں، تو مت سوچیں کہ مسل پل ہو گیا اور آج کام بڑا کیا اور کوئی چیز کھینچ لی. نہیں، کل نفس ما عملت من خیر محضر اور من سوء، یہ گناہ قیامت کے دن بوجھ بنیں گے، پسینے کی صورت میں گناہ آئیں گے. میدان حشر میں بندے کی نیکیاں اور بدیاں شکلوں میں آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ خوب موٹی تازی قربانیاں کیا کرو، قیامت کے دن یہ تمہاری سواریاں بن جائیں گی. یہ جو ہم بکرا یا کوئی اور جانور ذبح کرتے ہیں اگر اللہ کے لیے، تو یہ ہماری قربانیاں ہوں گی. پھر اسی طرح قبر کے اندر ہمارے اعمال مجسم شکل میں آئیں گے، ہمارا قرآن، قرآن کی صورتیں شکل بن کے آ جائیں گی. نیکیاں خوبصورت انسان کی طرح قبر میں ہماری تنہائی کاٹیں گی، اور گناہ، برائیاں، بدعملیاں قبر میں کری شکل میں آئیں گی. وہ مال دولت جس میں زکات نہ دیا، وہ کنز بن کے ایک ازدہے کی شکل میں، ایک سانپ اور بچھو کی صورت میں آئے گا. تو پتہ نہیں کیا کچھ ہونے لگا ہے. اور اس دن بندے کی خواہش ہوگی، تبدل بینہا وبینہ امدن بعیدا. اس دن آدمی تمنا کرے گا، کاش اس کے اور اس کے بیچ میں. یہ بینہا کیا ہے بتائیں گے آپ لوگ؟ کوشش کریں، پیچھے لکھا ہوا ہے بینہا، سو کی طرف جا رہا ہے. ہا ہے نا مونس ہے، تو سو مونس ہوتا ہے، کہ اس کے گناہ و بینہ کیا ہے، اس آدمی کے. بلکہ بینہا اگر آپ اس طرف جائیں تو نفس کے ساتھ جا سکتا ہے پیچھے، نفس بھی مونس ہوتا ہے، کہ انسان اور اس کے گناہ کے بیچ میں امدم بعیدا. مدت کے لیے عربی زبان میں بہت لفظ آتے ہیں، مدت لفظ خود بھی ایک عربی کا لفظ ہے، حکم بھی ہے. یہاں امد آیا ہے، طویل مدت، جس کو آپ کہتے ہیں میری نظروں سے دور ہو جاؤ. بندہ اس دن اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا، کہے گا کاش آج مجھے شکل نہ دیکھنی پڑے تمہاری. دنیا میں ہم اپنے گناہ اور اپنے نافرمانیوں کو سینے سے لگاتے ہیں، ہمیں پسند ہی بڑی ہوتی ہیں وہ چیزیں جن میں گناہوں کی بو آ رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں ہائے سو سویٹ، کیا کرتے تھے، کیا فوٹو سیشن ہوا تھا، یہ البمیں چھپا کے رکھو، سنبھال کے رکھو، یہ ویڈیوز لاؤ کدھر. قیامت کے دن کہے گا دور کر دو ان چیزوں کو جنہوں نے مجھے بے حیا بنا دیا تھا، غیروں کی نظروں میں آ گیا تھا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے نا، بریکٹ، ایک ادھر ایک ادھر. حالانکہ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پہ بہت نرمی کرنے والا ہے. کیسے بچو گے بتاؤ؟ امیجن کیجئے آپ اور میں اپنے اعمال کے ساتھ کھڑے. آپ دیکھیں کہ ایئرپورٹ پہ ہر بندہ اپنی ٹرالی کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے نا، بلکہ بار بار وہ اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں कोई अपना सामान अनअटेंडेड ना छोड़े, कहीं आपको अनअटेंडेड मिले तो उसको पकड़िए ना, खौफ खाते हैं लोग। किसी जगह हम थे अभी नहीं, पिछले एक दो किसी ट्रिप की बात है, अमेरिका की खाली पंजा कहीं की भी बात है, बहरहाल तो एक बैग था, जैसे ये बैकपैक्स होते हैं हैंड कैरीज में मर्दों के पास होते हैं ना, बैग पे डालते हैं, वो बैग था, तो वो कहीं पड़ा हुआ था। और हम सारे उधर लाइनों में लगे हुए थे, तो जो वो सिक्योरिटी वाली लड़की थी ना जिसके काउंटर के पास था, तो उसने एकदम उसको देखा तो घबरा गई। फिर उन्होंने एक दो अनाउंस किया किसका बैग है ले ले। अब जब कोई नहीं आया ना, तो खौफ पूरे एक ऐसे ना वहशत सी तारी होने लगी माहौल में, हम लोग खड़े देख रहे हैं और वो बैग है। आखिर वो लड़की ने पुलिस को कॉल कर दिया, क्योंकि उनको ये डर होता है कि इसमें कोई बम रख के चला गया अभी फट जाए, और हम सबको भी ये लग रहा था अभी बम फूटेगा। खैर इतनी में ना पुलिस मैन आ गया। अच्छा वो उस बैग को यूं कर रहा है, तो पीछे से एक सीधा सा आदमी था, वो पता नहीं कहाँ था अल्लाह का बंदा, तो स्माइल देता हंसता हंसता आगे, यस वेयर आर यू, पता नहीं वो कहाँ गया हुआ था, उसको कोई नहीं पता किसकी अनाउंसमेंट हो रही है। ऐसे हम सबको लगा कि जान में जान आ गई, वरना ऐसे लग रहा था कि बम का गोला पड़ा हुआ है। क्यामत के दिन क्या होगा, जब इम्तिहान का पर्दा हट जाएगा और इंसान अपने आमाल के सरमाए के सामने खड़ा होगा, ना नेकी जाएगी ना गुना जाएगा, फमैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा और शर्रन यरा। और खैर एक जामे लफ्ज है, अल्लाह के करीब करने वाला हर नेक अमल उसमें शामिल है। जिस नेकी को आप छोटी समझते हैं ना, वो क्यामत के दिन बहुत बड़ी होगी, बाज़ दफ़ा सिर्फ एक एक क्रोन कम होने की वजह से आप टिकट नहीं खरीद सकते, आप पानी का एक ग्लास लेने लगे, एक क्रोन कम था, नहीं मिलेगा। और मैंने वो एक स्लाइड बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर की थी कि 1 रुपया लाख नहीं होता, लेकिन 1 रुपया कम हो तो लाख लाख नहीं रहता, हजार में तो आप वही 1 रुपया हैं। अपने आप को लाख बनाना है, अपने ऊपर लीजिए, देखिए जो काम करें आसान करें, नहीं तो ना करें। अधूरी नेकियां बाज़वा क़यामत के दिन हसरत का सबब होंगी। 5 नमाजों में एक पढ़ लें, दो पढ़ लें, बाकी ना पढ़ें जाया, 4 पढ़ लें, 5वीं ना पढ़ें जाया, कबूलियत कब है जब पूरी है। आप कहते अच्छा क्या करें, वहां तो स्टक थे, ये थे वो थे, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, खड़े नहीं तो बैठ के, बैठ के नहीं तो लेट के, लेट के इशारों से पढ़ लो, पढ़नी जरूर है, ये इशारे हैं हमारे लिए। तो लिहाजा इधर अल्लाह ताला ने आपको मुझे अपने आमाल की क्वालिटी का एहसास दिला दिया। और ये जो बात है ना कि मेरे और मेरे गुनाहों के बीच में दूरी हो, इस पे कोई दुआ याद आई आपको? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया या कमा बात बैन अल मशरिकी वल मगरिब, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिन अल खताया या कमा युनक्कस सौब अल अबयद मिन अद दनस। इंसान अगर देखे तो अपने गुनाहों को दुनिया में अपने से दूर कर दे, वरना उस दिन तो अफसोस हो गई, हसरत होगी। जिस तरह इंसान उस दिन अपने गुनाहों से दूर हो रहा होगा ना, इसी तरह अपने प्यारों से भी दूर हो रहा होगा। सूरत अबस, यौम यफिर्रुल मरु मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल इमरि मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग्नी। जिस दिन आदमी भाग रहा होगा अपनी माँ से, बीवी से, भाई से, बेटे से, कि अल्लाह सबको ले ले, क्यों, क्या अपनी हालत ही उस दिन बड़ी परेशान कुन है। और सूरह मारिज में भी आता है, लव यफ्तदी मिन अज़ाब यौम इज़िन बी बनी, बच्चों बेटों बीवियों कुंबे कबीले बरादरी सबको अल्लाह ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। कल्ला इन्नहा लज़ा, हरगिज़ नहीं, ये तो एक आग है, नज़ात लिश्शवा, जो चेहरे की खाल को झुलस जाती है। और सूरत निसा 42 में आता है, यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीना कफरू वसवुर्रसूल लव तुसव्वा बिहिमुल अर्दु, जिस दिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया और रसूल की नाफरमानी की, तमन्ना करेंगे कि काश इन पर जमीन बराबर कर दी जाए। उर्दू में हम क्या बोलते हैं, काश जमीन फटे और हम इसमें चले जाए। तो युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुमको अपने नफ्स से डराता है, तो करो क्या। देखिए यहां तक हमने क्या बात कर ली, क्या किया आपने, मैंने अल्लाह की मोहब्बत आई है, मुझे तो जब से पढ़ा रही हूं मेरी नजर किसी और चीज पे गई कोई नहीं, बस एक ही पता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब आखिरी दो आयतों में सिर्फ इशारा दे दिया रसूल का कि एक चीज क़यामत के दिन अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से ताल्लुक बचाएगा, और दूसरा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी, ए नबी कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। किसकी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। होगा क्या? नंबर एक, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। दूसरा फायदा, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। कैसे? क्योंकि वल्लाहु गफूरु रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम वाला है। ठीक है, इत्तबाए रसूल की बात आ गई। अगली आयत में इताते रसूल, कुल अतीउल्लाह वर रसूल, कह दीजिए कि इतात करो अल्लाह की और रसूल की, कोई कहता नहीं करता। पहली याद करें आज के सबक की, युदौना इला किताबिल्ला, किताब की तरफ बुलाया था ना, तो बहुत सारों का रवैया क्या था? सुमल्लजीना या तवल्लव, तवल्ला और मोरे दोन। यहां देखिए, वहां किससे एराज था? किताब से। यहां किताब, साहिब किताब से एराज है। फैन तवल्लव, फिर अगर वो पीठ फेर लें तो फैन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो अल्लाह ताला को ऐसे काफिर लोग बिल्कुल नहीं पसंद। दो आयतें हैं शायद डेढ़ लाइन की, लेकिन बड़ी अहम आयतें हैं। दो लफ्ज आए हैं, समझ लें। ये कुरान का वो खूबसूरत नुक्ता है कि जहां आपको इताअत और इत्तबा का फर्क समझ आता है। पहली आयत में इत्तबा है, दूसरी में इताअत है। ठीक है, इताअत नहीं है अगर तो कुफर होगा। आप देखिए, इताअत क्या होता है? तौअन से, तोए बौइन, खुशी से किसी काम का करना। ये जब नफिल नमाज पढ़ते हैं ना, या कोई भी काम नफली तौर पे करें, तो इसको अरबी में बाबे ततव्वो कहते हैं, वॉलंटेरिली कीवी गुड डीड्स। अब इताअत क्या है कि रसूल ने जिस काम के करने का हुक्म दिया, आप उसको दिल की खुशी से करें। तो इत्तबा क्या है? इवन उन्होंने हमें कहा भी नहीं, खुद किया और उनको करता देखकर हम भी करने लगे। कौन सा बड़ा मुकाम है जी? इत्तबा। मसलन, माँ बेटी को कहती है ये कपड़े ना पहनो, बेटी का काम है ना पहने, खुशी से करे कि माँ है तो मना कर रही है ना, ये क्या हुई? इताअत। दूसरी सूरत है कि माँ ने बेटी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि माँ खुद ही बड़े अच्छे साफ सुथरे ढीले ढाले कपड़े पहनती है, तो बेटी ने क्या किया? उसको देखा तो वही किया। यही फर्क है इसमें। मारे बांधे की इताअत इताअत नहीं है। याद रखिए, नेकी करो तो खुशी के लिए करो और खुश भी रहो। रोते लोग नेकी नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सब कुछ करो, कुछ कामों में इताअत करो, कुछ में इत्तबा करो। अच्छा, कुछ काम नबी सल्लम ने कहे। अब एक सवाल है बड़ा अहम, कोई काम ऐसा है कि अल्लाह के नबी ने हमें कहा तो कुछ और है, लेकिन खुद कुछ और किया, फिर हम क्या करें? मसलन सौमे विसाल, हमारे लिए आज रोजा रखा है ना, तो बगैर खाए अगले दिन का रोजा शुरू कर देना जायज नहीं है। नबी सल्लम ये रखते थे। खाला के नबी, आप ऐसा क्यों करते हैं? आपने फरमाया मुझे तो मेरा रब खिला देता है। अब वो नबी की एक तख़सीस थी, हम क्या करेंगे? नहीं, एक दिन रोजा रखेंगे ना, तो एक दिन छोड़ भी देंगे। बात वाजे हुई? आपने कहा मैं सोता हूं और मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। हम सोते हैं तो हमारा दिल भी सो जाता है। बात वाजे? तो फिर जब इताअत और इत्तबा दोनों इकट्ठे हों, तो फिर क्या करना है? फिर इताअत करनी है। कितनों को ये बात समझ हो गई है? क्योंकि माँ खुद कुछ काम कर रही है, बच्ची को वो कुछ और कह रही है, तो बच्ची को वो करना चाहिए जो माँ ने उसको कहा है। और सहाबा इतना इत्तबा और इताअत का ख्याल करते थे कि खाते भी उस तरीके से थे जैसे अल्लाह के नबी खाते थे। उठते थे, बैठते थे, नबी सल्लम से मोहब्बत की अलामतें। ये मैंने दो तीन दफा बुक पढ़ाई हुई है, शॉर्ट वर्जन भी पढ़ाया हुआ है, लॉन्ग भी पढ़ाया हुआ है, इतनी सिंपल तरीके से कि अगर मैं कहती हूँ कि मुझे नबी सल्लम से मोहब्बत है, तो क्या मेरे अंदर उसकी अलामतें भी हैं? और अगर हैं तो वो क्या है? बहुत दिलचस्प टॉपिक है जिसको देखा जा सकता है। तो ये था आज का सबक। कुरान तो मैं कहती हूँ कमी नहीं छोड़ता, सच के नहीं। और आपने देखा कि अल्लाह की मोहब्बत पाना हम सबका गोल होता है, तरीका क्या है? नबी की तबा। तो जो नबी के तौर तरीकों को ना माने, नहीं यहां हम दाढ़ी रख नहीं सकते, पर्दा मुमकिन नहीं, सूद से रह नहीं सकते, आप मुझे बता सकते हैं फिर अल्लाह को कैसे लगेंगे? दुनिया में भी आप देखिए, जब लोग किसी को कॉपी करते हैं, किसको कॉपी करते हैं? आप और मैं, जिससे मोहब्बत होती है। मिसाल देती हूँ, चले आप यहाँ नॉर्वे में रहती हैं, बहुत दिन से आप अक्सर नहीं गई, एक दिन आप बाहर निकली तो आपको एक सिस्टर नजर आ गई जिसकी शक्ल बिल्कुल आपकी बहन से मिलती है, कैसा लगेगा? खुशी होगी ना, आप खुद ब खुद उनकी तरफ बढ़ेंगी। आप कहेंगे असल में आप मेरी बहन से बहुत मिलती हैं, तो आपको प्यार आएगा ना, क्योंकि बहन से प्यार है। अल्लाह जब हमें नबी के रंग रूप में देखता है तो अल्लाह को कितना प्यार आता होगा, क्योंकि अल्लाह को अपने नबी से बड़ा प्यार है। तो ये जो जाहिरदारी होती है ना, इसकी बहुत जगह होती है, इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा होता है। जरूरत इस बात की है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तो हो, हम नबी सल्लम वाले बन के तो देखें। देखिए, हम बचपन में तो घर घर खेलते थे, गुड़िया पटोलों से, बुरकों से खेलते थे, दुपट्टों से खेलते थे। आपके नहीं, कौन नहीं खेला अब आप में से, माँ के दुपट्टे का बुरका बना के अब खेलते हुए क्या? खेल खेल में पहनिए, दिखाएं लोगों को, और फिर पहनिए भी ऐसा कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। यकीन करें, आप महसूस करेंगे। मैं कह सकती हूँ जितनी इज्जत और जितनी मोहब्बत नबी सल्लम की सुन्नतों पे चल के आपको वेस्ट में मिलती है, वल्लाह इतनी अपने ईस्ट में नहीं मिलती। मुझे तो इधर आके ज्यादा मिली और कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। कोई कुछ नहीं कहता आपको, ये आप खुद को कहते हैं, जब तक आपके अंदर नहीं होगा ना। और मैंने देखा एक चीज, आप छोड़ते हैं बाकी सारी नेकियां अल्लाह छुड़ाते हैं। मैं ऐसी सिस्टर को जानती हूँ, पर्दा करती थी, पता नहीं क्या अल्लाह ने उनके दिमाग में डाला, किस बहाने से छुटा, सब कुछ ही छुट गया। ऐसे लुढ़क के ऊपर की सीढ़ी से बंदा नीचे गिरता है, फिर पता नहीं मुंह के बल गिरे या पीठ के बल गिरे। ये छोटी छोटी नेकियां जो होती हैं, जो हमें कम अज कम बांधती है, इसकी शर्म होती है। एक शख्स तो जैसे एक आम मर्द होते हैं, जैसे भी होते हैं, तो उनके बेटे ने दाढ़ी रख ली, यंग बेटे ने रखी। उसने कहा मैंने काटनी नहीं। तो जब बेटे ने रखी ना, तो फिर थोड़ा सार आया, कहने कि अब इसकी हो गई तो मैं भी रख लेता हूँ, क्योंकि लोग देखते हैं कि बाप तो ऐसा है तो बेटा ऐसा है। अच्छा, दाढ़ी रख ली। उसके बाद कोई, जिसको कहना चाहिए कि करीबी दोस्त या रिश्तेदार, बेतकल्लुफ, तो उन्होंने कहा चलो फिल्म देखने चलते हैं। तो फिल्म देखने गए तो वापस आके कहा आज के बाद फिल्म नहीं देखनी, मुझे दाढ़ी के साथ फिल्म देखते हुए जाते हुए शर्म है। ये है चेन रिएक्शन। अल्लाह ताला हम सबको कॉन्फिडेंस दे। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن الله لا يحب الكافرين